ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण के कर्म के द्वारा, क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्म के द्वारा, वैश्य वैश्य के कर्म के द्वारा, शूद्र शूद्र अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर परम गति को प्राप्त हो जावे। तो कैसे कि सब संसार जो है उसमें भगवान विराजमान हो रहे, इस वास्ते संसार की सेवा ही भगवान की सेवा है। सारे ब्रह्मांड को साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके और अपने अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य कर्म का आचरण भगवान के लिए करे, सबको सुख पहुंचाने के लिए करे। शूद्र है सो सेवा करके सबको सुख पहुंचावे, वैश्य है सो कृषि गोरक्ष और वाणिज्य के द्वारा सब संसार को सुख पहुंचावे, क्षत्रिय है सो अपने प्रजा शासन के द्वारा संसार को सुख पहुंचावे, और ब्राह्मण जो है सो अपने कर्मों के द्वारा संसार को सुख पहुंचावे। यही भगवान की सेवा है। जगत जनार्दन की जो सेवा है वही भगवान की सेवा है, तो उसका कल्याण हो जाए। कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, सभी वर्ण और सभी आश्रम सभी जाति के बीच के मां मुक्ति बतलाई है। और कलयुग के बीच में विशेष छूट है, और कलयुग आप अपने लोगों को प्राप्त है, तो अब शीघ्र शीघ्र अपने आत्मा को उद्धार कर लेना चाहिए। यानी गृहस्थाश्रम में सहज में ही मनुष्य को कल्याण हो सका है। सर्वकर्माण अपि सदा कुर्वाणो मेरे पास ये बत प्रसादा द्वापनोति सात्वतं पद्मभ्यम्। के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भगवान कहते हैं कि मेरी शरण लेकर के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मनुष्य शाश्वत जो परम पद है, शाश्वत जो अविनाशी पद है, उसको प्राप्त हो जाए। कैसे कि भगवान के मेरी कृपा से। ये भगवान ने गीता की 18वीं जाके 56वें श्लोक में बताया, ऐसा मौका फिर कभी नहीं। भगवान कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में रह करके सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। साधन क्या है कि साधन की मेरी शरण लेकर। हर वक्त भगवान कहते हैं कि मेरा जप ध्यान करता हुआ, और समझो कि सदा सर्वदा कर्म करने पर भी मेरी प्राप्ति हो जाए। फिर कहना ही क्या है कि जो रात और दिन मेरे भजन ध्यान में लग जा उसको मेरी प्राप्ति हो जाए, इसमें तो फिर कहना ही क्या है। यदि सातु नजदीक आ जाओ तो क्या करना चाहिए। मृत्यु जब निकट आ जाए उस वक्त में क्या करना चाहिए, बोले उस वक्त में तो भगवान को पकड़ना चाहिए। अंतकाले समय सुवर्ण मुक्त वा करे व्रम ये प्रयासी समद भाव याति नास्तत्र संशय हो। अंधकार के मां मरने के समय में भगवान कहते मेरे कोई श्रम करता हुआ जो देह को त्याग करके जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शंका के लिए इसमें क्या कोई गुंजाइश थी, बोले गुंजाइश थी, या गुंजाइश थी सारे जन्म में तो पाप ही पाप किया, और मरने के समय में भगवान की समृति हो गई तो पापी का भी उद्धार हो जाए। बोले क्यों नहीं हो जाए, भगवान का भजन जो है ऐसी चीज है, कैसा भी पापी हो उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। सारे पापों के नाश करने के लिए भजन जो है सो एक नंबर चीज है, जिससे ज्ञान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भजन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान से सारे पापों के नाश के लिए भगवान ने गीता के चौथी अध्याय के 36वें श्लोक की श्लोक में बताया है, अतिशेषि पापे व्यय सर्वे व्यय पाप कृत सर्वज्ञान पले नये वजन संग प्रशि। अर्जुन तू यदि दुनिया में जितने जो पापी है उससे अधिकतर पापी हुए है तो नहीं, किंतु यदि ऐसा भी हुए तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को लांग जाएगा। यदि धांसी समित दोगुनी भस्म सात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा, जिससे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि जो सब पापों को भस्म कर देता है। ये बात एक प्रकार से बतलाई ऐसे ही भक्ति के द्वारा। जब ही नाम हीर दे धरो भयो पाप को नाश,
जब ही नाम हीर दे धरो भयो पाप को नाश,
जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने जैसे कोई घास की ढेरी है उस पर आग की चिंगारी रख दी जावे तो वह स्वाहा भस्म हो जाती। इसी प्रकार से थी समझो भगवान का जो नाम है हृदय में धारण करने से हृदय में स्थित जितने जो पाप है वो सूखे घास की मापक से वसूल जल जाए भगवान के भजन की प्रभाव। चाहे कितना ही पाप जैसे घास अधिक हुए और आग लग जाए सूखा घास हुए तो फिर कितना ही हो ईंधन, इसी प्रकार से पाप चाहे कितने ही हो लगे आग में क्या बुझे क्या फिल्म है, तो भगवान को जो भजन है जो सब पापा ने भस्म कर डाले। तो कैसो ही पापी हो भगवान के भजन को ऐसो प्रभाव है और मरने के समय के बीच में विशेष छूट दी है कि कितना ही पापी हो और मरने के समय में भगवान को समर्पण करता हुआ मरता है तो उसका निश्चय कल्याण हो जाता है। ये भाव है, इस पर ये बात आई कि जो भगवान को भजन करे बंको तो भगवान उद्धार कर देवे और जो भजन नहीं करे बंको उद्धार नहीं करे। भगवान को स्तुति करे प्रार्थना करे गुणगान करे लोग उद्धार कर दी और जो नहीं करे जी कब नहीं करे। तो भगवान के मां भी समझो कि राग द्वेष भेद बुद्धि है, बोले तुम समझते नहीं हो भगवान में कोई भेदभाव नहीं है तो बात यक है। भगवान के नाम की महिमा है ऐसी, भगवान ने सोचा कि जीवों का शीघ्र कल्याण कैसे हो, न्याय के मां भी वादा नहीं आवे पर कल्याण भी हो जाए, क्योंकि भगवान जी सो न्याय करता है और दयालु है। किसी ने कहा भी दया है तो दया क्या काम आवेगी, वो काम तो न्याय के अनुसार ही करेगा। कहो कि दयालु है तो फिर वो न्याय के अनुसार काम कैसे करेगा। बोले भगवान ऐसे ही पुरुष है, दयालु भी है और न्यायकारी भी है, इतना ही नहीं अंतर्यामी भी है, प्रभावशाली भी है, बचावे तो सारे संसार को उद्धार कर सके, इस प्रकार उनका पावर है। और वहां अन्याय हो ही नहीं सकता, इस वास्ते में न्याय करता है और इतना दयालु है कि अपने आप को भी आत्म के प्रति अर्पण कर देता है। तो ये सब बात से यही सिद्ध होती है कि इस प्रकार से भगवान ऐसे ही पुरुष हैं, उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो बोले यह क्या बात है कि मरने के समय के मां भगवान को याद करता हुआ जाओ, भगवान को प्राप्त हुए नहीं याद करता जाओ नहीं हुए। बोले इस कानून के मां बड़ी भारी दया भरी है, भगवान ने सोचा ये पापी लोग पाप करते रहेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा, तो इनको छूट दिए कि अंतकाल के मां मेरा स्मरण करता हो जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो यह छूटे समझो कि गवर्नमेंट के राज में भी है, गवर्नमेंट के राज में जिसको फांसी का हुक्म हो जाता है अमुक तारीख में इसको फांसी होगी तो सरकार उसको पूछती है तो भाई तुम्हारे को अमुक तारीख में फांसी होने वाली है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम किससे मिलना चाहते हो बोलो, क्या खाना चाहते हो, क्योंकि फांसी के दिन नजदीक आ गए, अब परसों तुम्हारे को फांसी होनी है। तो कैदी है कि जो फांसी का हुक्म हो गया तो फांसी होने वाली है, तो इसलिए वो कोई बात की अर्ज कर दे रहे कि मेरी स्त्री से मिला दो, मेरी माँ से मिला दो, मेरे भाई से मिला दो। तो सरकारी माने सरकार के लोग उसको मिला दे। जब इतनी भारी दया सरकार के माँ है कानून में, तो भगवान की कानून में तो बहुत भारी दया भरी हुई। तो उन्होंने एक ऐसी कानून बना दी कि जिसमें विषमता का दोष नहीं आवे। एक तो ये बात है कि यदि ऐसी बात है तो फिर हर भक्ति भगवान को याद रखना चाहिए, न मालूम किस समय में हमारा शरीर बरत जाए। दूसरी बात यह है कि भी एक प्रकार से मनुष्य मरने के समय में जिस जिस बात को याद करता है उस चीज को प्राप्त हो जाता है, ऐसा गीता में श्लोक है, यंग यंग वापी समण भावम तजतंते कलीवरम तं तमेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। हे कौन्ते, मरने के समय में ये जीव ये मनुष्य जिस जिस भाव को भावता हुआ और शरीर को त्याग करके जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सदा तद भाव से भावित हुआ माने जिसके जो अधिक अभ्यास है सदा, वो मतलब है कि करीब करीब सदा जिस काम को ये करता है वही संस्कार इसके स्वप्न में सो रहते हैं। सदा जिसका अधिक अभ्यास होता है वही संस्कार हृदय में जम जाते हैं और फिर हृदय से थी वही समृद्धि होती है। जो हृदय में जैसे संस्कार होते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पातांजलि दर्शन में समृद्धि और संस्कार दोनों को एक ही रूप कहा है, समृद्धि से संस्कार, संस्कार से समृद्धि। तो बुरे संस्कार उसके हृदय के मां होंगे तो उसका नतीजा ही फिर पूरा ही होगा। भगवान ने कानून बना दी कि एक प्रकार से जिस जिस भाव को भावता और शरीर को त्याग जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि किसी भी योनि को हम याद करेंगे उसी को उसको प्राप्त हो जाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, मनमुग्ध मन शिवालय की जय। इस पर एक कहानी है, एक कपड़े का दुकानदार था और वो कपड़ा बेचा करता था। एक दिन की बात है कि उसको रात की नींद थी, क्योंकि देवी पूजा का पर्व होने के कारण से रात में वो अधिक जाग चुका था, इसलिए कपड़े बेचने के समय के मां आपने दिन में भी उसको एक नींद आने लगी। तो आने लगी तो वो दिन में दुकान के ऊपर सो गया। दो तीन ग्राहक आए उसकी प्रतीक्षा में वे बैठ गए। तो गर्मी की मौसम थी और एक पतला सा चदरा ओढ़ करके आपने सो गए। तो ये माछी जो है ये तंग करती थी, कपड़ा फसरा था। अब उसको स्वप्न आया, स्वप्न के बीच के मां एक भाई कोई मार्किन खरीदने के वास्ते आया, 5 रुपयों का कितना मार्किन दोगे? तो उसने कहा 7 गज देंगे। और उन्हें 9 गज तो नहीं मिलेगा, बोले 8 गज दो। फिर एक प्रकार से बोले अच्छा 7.5 गज दे देता हूं। फिर वो नियम 8 से कम नहीं लेंगे। इतने में उनका ये 7.25 कहकर उसको फाड़ दिया। सपने में उसको कपड़ा फाड़ा तो सपने का भाव इसमें सांप्रत में सो आपने इस शरीर के बीच में काम कर गया कि इस शरीर में जो चादर थी उसको जहर फाड़ दिया। ओडी भी चादर इतने में आस पास आई तो बोले क्या है चादर क्यों फाड़ डाली? मेरे को स्वप्न आया ऐसा, मैं सपने में किसी को कपड़ा फाड़ कर बेचता था वो चादर फाड़ गई। तो दिन भर में वो कपड़ा बेचता है फाड़ फाड़ करके, तो रात्रि के मां सपने में भी वो कपड़ा ही फाड़ करके बेचता है। जैसे हम व्याख्यान देते हैं तो स्वप्न भी हमारे को अधिक आते हैं तो व्याख्यान के आते हैं। तो जो आदमी जैसा काम करता है उसको वैसे ही स्वप्न आते हैं। वकील साहब है तो ये एक प्रकार से आजकल तो नहीं, पर जब करते थे तो उस विषय के स्वप्न आते थे कि आपने अमुक वकील आया तो उसके साथ में ये करना है, उसका मिश्र इस प्रकार से बढ़ानी है। तो और जो आदमी जैसा काम करता है उसको वैसा ही एक प्रकार स्वप्न आता है। तो ये बात बतलाई कि जैसा अभ्यास मनुष्य करता है मरने के समय में वो बात उसी रूप में याद आती है। तो इसलिए कहा तस्मा सर्वे सुकालेषु महामनुष्यम युद्धचा। इसलिए अर्जुन तू सब समय के बीच के मां तू मेरा स्मरण कर और युद्ध लिए सो कर। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध की बात कही, इसी तरह से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र का जो कर्तव्य बताया है कर्म बताया है उसके लिए वो बात है। तो हर वक्त भगवान को याद रखते हुए ही समझो कि अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए, तो उस पर ये श्लोक एक प्रकार से बताया कि भी यंग वापी समण भाव तत्वते के लिए ब्रह्म तंग तमेवेति कौनते सदा तदभाव भावित हे कौनते सदा तदभाव भावित है। सदा तदभाव से भावित हुआ पुरुष मरने के समय में जिस जिस भाव को माने जिस जिस स्वरूप को याद करता हुआ जाता है वह उस उसको ही प्राप्त हो जाता है। जिस जिस रूप को याद करता जाता है उस उसको ही प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है कि जैसे आजकल तो ये बात देखने में आती है कि जैसे कैमरा है कैमरा, और कैमरे के सन्मुख जैसा दृश्य होता है उस वो कैमरे के अंदर जो आयना है शीशा उसको पकड़ लेता है, उसके अंदर वैसा ही एक प्रकार से फोटो आ जाता है। तिरंगा कोई उसका चित्र बनाना चाहे तो कैमरे वाला आकर उसका फोटो ले जाता है और दो चार दिन में उसके मन माफी के फोटो बना करके ला देता है। इसी प्रकार से समझो कि ये शरीर है ये कैमरा है और इसके भीतर में जो अंतःकरण है वो आईना है और इसके मन के मां जो संकल्प आते हैं वो ही उस आईने के सामने दृश्य है और जैसा संकल्प आता है उसी संकल्प को अपने मन से पकड़ लेता है। पशु पक्षी कीट पतंग बस मरने के समय अंतिम समय के मां अंतिम क्षण के बीच के मां जब उसके प्राण निकलते हैं तो प्राणों के अंदर मन और इंद्रियां हैं और मन के अंदर वो संकल्प है। अब कुत्ते का संकल्प उसके मन में है, मरने के समय कुत्ता याद आ गया तो कुत्ते की आकृति उसके मन के भीतर के बीच के मां आपने छप गई यानी मन के मां अंकित हो गई, संस्कार तो अंकित हो गए। अब शास्त्र बतलाता है कि वायु देवता समष्टि वायु जो है इस मनुष्य के प्राण वायु को वृष्टि वायु को कुत्ते के खाद्य पदार्थ के बीच में प्रवेश करा देता है या जल में या कुत्ते के श्वास के द्वारा उसे के अंदर वो चला जाता है। इस प्रकार से जाने के बाद वो कुत्ते के वीर्य के मां जाकर के दाखिल हो जाता है, फिर कुत्ती से सहवास करता है तो उस कुत्ती का रज उसका वीर्य दोनों मिलकर के और जैसे संचय के बीच के मां जो आपने मूर्ति ढलती है ऐसे ही उसके हृदय में जो संस्कार रूपी जो संचय है उसमें वो ढल जाते हैं और फिर कुत्ते की आकृति पक्कर की वो फिर बाहर ना जाता है। हम आज फोटो वाले से फोटो उतराते हैं तो वो भी दो तीन दिन में मसाला भर करके उस फोटो को ठीक बना करके लेता है तिरंगे चित्र को, तो यहां तीन रंग का चित्र शो बनता है लौकिक फोटो के मां पहला पीला रंग उसके बाद में लाल उसके बाद के बीच के मां ब्लू रंग, तो उसमें फिर सब रंग खिल जाते हैं और यहां एक योनि से दूसरी योनि में जाने में दो रंग से सब रंग हो जाते हैं। पुरुष का वीर्य रस्त्री का रज होकर के वो उसमें ढल जाता है, जैसे एक कोई पितृ की मूर्ति का संचय जो है उसके वहां केवल आपने संस्कार अंकित है और फिर उसमें पितर ढाला जा रहा तो ठीक उस मूर्ति के अनुसार ही उसमें से मूर्ति बनकर निकल जाती है। फोटो की बात आपको कह रहा था कि एक फोटो वाले से किसी ने अपना फोटो उतराया, उसको सामने बैठा करके के और उससे का दृश्य ठीक आपने कर लिया फोटो के अंदर और कहा कि हम 1 2 3 बोलेंगे तो तुम्हारा फोटो आ जाएगा उसमें, तो तुम सावधान रहना। तो सावधान ही था किंतु कोई एक माछी यहां आगे बैठ गई तो जब देखा कि माछी भी फोटो में उतर जाएगी तो उसने हाथ से उस माछी को उड़ाने की चेष्टा करी। अब वो बोलता है कि 1 2 और जब थरी बोला तब हाथ उसका इधर इस तरह घुमा दिया माछी ने उड़ाने के लिए, तो फोटो के मां उसका हाथ भी माथे के ऊपर उतरा। बोले आपने हमारा फोटो बिगाड़ दिया। बोले हमने नहीं बिगाड़ा, तुमने ही बिगाड़ा। हमने तो पहले कह दिया सावधान सावधान, 1 2 3 बोले तो फोटो उतर जाएगा, तो 1 2 बोले तब तक फोटो तुम्हारा ठीक था और थ्री बोलने के साथ तुमने हाथ कोई घुमाया हुआ। हाँ बोले याद आ गया, हमारे माथी थी उसको उड़ाते थे। तो बोले दोष हमारा कि तुम्हारा? तो बोले दूसरा फोटो लिया। बोले लगेंगे फीस लेंगे? तो अच्छा कितना फीस है? 10 रुपया। तो 10 रुपया दे दिया। दूसरा एक प्रकार से सावधानी से बैठकर फोटो उतरा लिया, किंतु ये मरने के समय जो तुम्हारा फोटो उतरेगा वो चाहे 1 लाख रुपया खर्च करो फिर वो बदलने का नहीं फोटो। तो इस वास्ते मरने के समय में जिस जिस भाव को धारण करता है शरीर को त्याग कर जाता है उसी चीज को प्राप्त होता है। तो यंग यंग वापिस श्रवण भाव तत्संति के लिए तंत्र में कौनते सदा तदभाव भावित है। तो जिस जिस भाव को भावता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है, इसका ये भाव यहां दिख रहा है। तो हम लोगों को हर वक्त सावधान रहना चाहिए कहीं हमारा फोटो नहीं बिगड़ गया। मृत्यु का क्या विश्वास किस वक्त आकर प्राप्त हो जाए और मरने के समय के बीच में हमारे हृदय के मां जैसा संकल्प है उसी के अनुसार भावी हमारा जन्म हो जाएगा। तो हमारे को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए जो हमारी दुर्गति नहीं हुए। इस बात को याद रख करके ही भगवान कहते हैं कि तस्मा सर्वे सु काले सु मां मनुष्यम युद्ध है। इस वास्ते हे अर्जुन सब समय के मां तुम मुझको ऐसो याद रख, मेरे को समर्पण कर और युद्ध भी कर।